একাকালে কোথা গেল পাশাণে টুটিব মাথা অনল পাশিব সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কইল সে সঙ্গ পাইয়া কান্দে নর সে সঙ্গ পাইয়া কান্দে নর
तीन उत्सव है तो चातुर्मास अभी अगले चार महीने के लिए प्रारंभ हो रहा है और गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा का उत्सव भी आज मनाते हैं और तीसरा सनातन गोस्वामी का तिरुभाव तिथि है तो मैं थोड़ा थोड़ा विषय प्रयास करता हूँ बोलने में। तो सबसे पहले जो ये गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है व्यास पूर्णिमा, इसके बारे में अधिकांश विद्वान जनों का मत है कि आज व्यासदेव का आविर्भाव दिवस है। कुछ का मत अलग भी है लेकिन इससे, और अधिकांश जो लोग हैं या वास्तविकता वाले हिंदू समाज के जो लोग हैं आज के दिन गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। जैसे इंग्लिश कैलेंडर में 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन के आई थिंक बर्थडे के दिन टीचर्स डे मनाते हैं जैसे, तो ऐसे ही ये हिंदू धर्म के अंदर जो है लोग आज दिन गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। और कई कई हिंदू राष्ट्र हिंदू समुदायों के अंदर तो अपने टीचर्स की और इत्यादि इत्यादि उनकी पूजा की जाती है आज के दिन, ऐसा भी होता है। और 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी उत्सव मनाया था, नित्यानंद प्रभु का व्यास पूजा उन्होंने मनाया इस दिन। শুন শুন নিত্যানন্দ শ্রীপাদ গোসাই ব্যাস পূজা তোমার হইবে কোন থাই, কি কহাঁ পে আপনি ব্যাস সেরেমনি হোল্ড করেনগে, ক্যোকি উস সময় শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু জো হ্যায় ব্রহ্মচারী, স্ট্রিক্ট ব্রহ্মচারী থে উস সময় বো। আর বিশেষ কর জো ব্যাস পূর্ণিমা কা মহোৎসব হ্যায়, একচুয়ালি সবই টিচার জো ব্যাস দেব কি লাইন কে অন্দর উনকি পূজা কি জাতি হ্যায়, আর विशेषकर यह पर्व मनाया जाता है सन्यासियों के द्वारा। मुख्यतः सब आश्रम मनाते हैं लेकिन मुख्यतः सन्यासियों का आश्रम है, और सभी आज के दिन तो हम अभी वृंदावन जाकर आए थे, जगह जगह व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के उत्सव थे, महान भव्य गुरुओं की पूजा की जाती है आज के दिन, अर्थात सभी जिनको सोपल व्यास का प्रतिनिधि माना जाता है। लेकिन मतलब सभी गुरु जब भी वो अवतरित हुए, कोई भी गुरु की पदवी स्वीकार किए या जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो उनका आज के दिन पूजा किया जाता है बेसिकली। और लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर ने इसका थोड़ा खंडन किया और ये रीति को थोड़ा बदला, तो उन्होंने अपने समय पे चैतन्य भागवत के तात्पर्य में भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर लिख रहे हैं कि व्यास देव के जो सबसे महान शिष्यों में शिष्य हैं वो है मध्वाचार्य, ऑफकोर्स मध्वाचार्य हमारी गुरु परंपरा के अंदर, तो उनसे तो हम अलग ही मत सुनते हैं, मायावादियों के विरुद्ध या फिर विशेषकर मायावादियों के विरुद्ध। तो ये जो आज का पर्व है, मुख्यतः गुरु पूर्णिमा मायावादी लोगों के द्वारा मनाया जाता है। मुख्यतः वैष्णव संप्रदाय के अंदर विशेषकर भक्ति सिद्धांत ठाकुर के बाद से जिस दिन गुरु का प्राकट्य दिवस होता है उस दिन से मनाते हैं। वही प्रथा हम इसको हमने भी देखते हैं, जैसे हम देखते हैं अभी रथ यात्रा के दिन फिर होली ने राधा गोविंद महाराज का व्यास पूजा था, और श्रावण ये शयन एकादशी के दिन लोकनाथ स्वामी महाराज का और अन्य अन्य आचार्यों का हम व्यास पूजा देखते हैं। तो जिस दिन वो वास्तविकता प्रकट हुए, उनका बर्थडे है बेसिकली, उस दिन स्पेसिफिकली उनका व्यास पूजा मनाया जाता है। तो भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं, इन द मायावादी संप्रदाय द मेक शो ऑफ व्यास पूजा इज सीन ऑन गुरु पूर्णिमा डे इन द मंथ ऑफ आषाढ़ जून जुलाई द मेक शो ऑफ व्यास पूजा। क्योंकि मायावादी वास्तविकता में भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं कि वो व्यास पूजा मना भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो व्यासदेव के सारे तर्क को खंडन ही कर देते हैं, तो वो कैसे व्यास पूजा मनाएंगे। तो ऐसा जो है, फिर भक्ति सिद्धांत ठाकुर रियल मीनिंग ऑफ व्यास पूजा बता रहे हैं। वो ये है कि वैदिक शास्त्रों में हर क्षण कि जब भी कोई व्यक्ति, ऐसा वैदिक शास्त्रों में वर्णन है, बताया जाता है कि जब कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत से विरक्ति प्राप्त कर लेता है तो भौतिक आनंद में उसकी रुचि नहीं रह जाती और वह भगवान की सेवा के प्रति उसकी आसक्ति बढ़ जाती है। जब भी ऐसा होता है, जिस समय भी एक व्यक्ति के अंदर भगवान की सेवा के प्रति जागरूक, वो व्यक्ति उसकी रुचि है जागृत हुई है और भौतिक आनंद से विरक्ति, तो वैसे ही उस समय व्यक्ति क्या करेगा, वो एक आचार्य के शरण ग्रहण करेगा। एंड एज सून एज द लिविंग एंटिटीज मटीरियल एंजॉयमेंट इज वैनक्विश्ड ही अप्रोचेज एन आचार्य एंड टेक शेल्टर ऑफ हिज लोटस फीट। टेकिंग शेल्टर एट द लोटस फीट ऑफ एन आचार्य इन दिस वे इज द रियल मीनिंग ऑफ द टर्म व्यास पूजा। कि जिस दिन व्यास पूजा का असली अर्थ ये है, जिस दिन हम आचार्यों की सही रूप से शरण ग्रहण करें, तो उसके लिए कोई मतलब कोई भी दिन हो सकता है व्यक्ति का दिन। तो बट फिर भी व्यास पूजा क्यों मनाते हैं, उसका फिर कारण यह है कि संन्यास लेने के लिए सबसे सूटेबल डे है पूर्णिमा, चाहे मायावादी हो चाहे वैष्णव भी हो। तो इसीलिए वेदर इम्पर्सनलिस्ट और पर्सनलिस्ट ऑल सन्यासीज वर्शिप देयर स्पिरिचुअल मास्टर। लेकिन भक्ति ठाकुर आगे लिख रहे हैं, देट इज वाई व्यास पूजा इज जनरली सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे ऑफ आषाढ़। आज के दिन व्यास पूजा मनाई जाती है जो कि गुरु का आविर्भाव दिवस माना जाता है। सर्वेंट्स ऑफ श्री गौड़ीय मठ ऑब्जर्व श्री व्यास पूजा एवरी ईयर ऑन द फिफ्थ डे ऑफ द वेनिंग मून इन द मंथ ऑफ माघ। साइन ऑफ रेस्पेक्ट, जब भक्ति ठाकुर का प्राकट्य दिवस है तो उस दिन गौड़ीय मठ में व्यास पूजा मनाई जाती है। तो भक्ति ठाकुर चेंज दिस सिस्टम ऑफ व्यास पूजा। और जो है फिर आगे बोल रहे हैं, एंड एनुअल ऑब्जर्वेंस ऑफ व्यास पूजा इज द बिगिनिंग ऑफ वर्शिपिंग द स्पिरिचुअल मास्टर थ्रू आउट द ईयर। ताकि हम प्रतिदिन एक शिष्य के लिए वास्तविकता में व्यास पूजा का दिन, जो उनके गुरु के व्यास पूजा का दिन है, वो एक प्रकार से नववर्ष होना चाहिए उसके लिए। कि आज मैं गुरु के आदेशों के प्रति, गुरु के मिशन के प्रति, गुरु की भावना के प्रति और समर्पित हो सकूं। तो ये एक रियल मीनिंग है व्यास पूजा का। इसलिए हमारे इस्कॉन मंदिर में आज कोई विशेष पर्व नहीं मनाया जाता। वैष्णव में हम गुरुओं की पूजा करते थे जिनका रिस्पेक्टिव आविर्भाव तिथि है एक्चुअली। इसके बाद में चातुर्मास जो आज से प्रारंभ हो रहा है 4 महीने के लिए, और ऐसा बोला जाता है ऑफकोर्स कई जगह पे शयन एकादशी जो पीछे एकादशी गई उससे प्रारंभ होकर उत्थान एकादशी तक मनाया जाएगा। और वैष्णव हम इस्कॉन में आज से लेके कार्तिक का जो पूर्णिमासी आएगा आखिरी वाला, तो उसके तक चतुर्मास का पालन किया जाएगा। और चातुर्मास में ऐसा बोला जाता है कि शयन एकादशी जिस दिन आएगी तो भगवान योग निद्रा में चले गए, और उत्थान एकादशी आएगी तो भगवान जो है इसको देवउतनी एकादशी बोलते हैं, भगवान जो है अपनी योग निद्रा से बाहर आएंगे। अफकोर्स ये हमारी तरह निद्रा नहीं है कि भगवान थक गए 8 महीने के बाद 4 महीने आराम कर रहे हैं, वो योग निद्रा है, तो डिवाइन स्लीप। और इसीलिए जो भक्त हैं इसको भी अच्छे तरीके से मनाते हैं, अपनी तपस्या बढ़ाते हैं, विशेषकर सेंस कंट्रोल के लिए स्पेशली यहाँ पे। हाँ, हरि भक्ति विलास एंड अदर शास्त्रीय रूल्स आर मेंट फॉर कर्टेलिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड. जो चातुर्मास के व्रत का मुख्य उद्देश्य है, एक उद्देश्य है सबसे महत्वपूर्ण, वो है इंद्रिय तृप्ति को नियंत्रण करना या मिनिमाइज करना. जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन है, जो शरीर की ये आवश्यकताएं हैं उनको न्यूनतम करना. और हम पुरातन काल से भी देखते हैं, श्री भागवतम वर्णन आता है कि ये जो चार महीने हैं आज से लेके यू नो श्रावण आश्विन भादव कार्तिक, ये चार महीने में बारिश का मौसम रहता है, ये दो ऋतुओं के अंदर और चार महीने के अंदर. तो इसीलिए पूर्व काल में, वैदिक काल में, पुरातन काल के अंदर जो महात्मा लोग होते थे, साधु संन्यासीगण होते थे, वो कहीं ट्रेवल नहीं करते थे क्योंकि हर जगह बारिश है, कीचड़ रहेगा तो जा नहीं सकते वो. इसीलिए वो एक जगह रह करके भजन किया करते थे. और भागवतों में प्रथम स्कंद के अंदर वर्णन आता है श्री नारद मुनि की कथा का, जब नारद दासी पुत्र थे पिछले पूर्व काल में, तो वो चार महीने के लिए उनको भक्ति वेदांत से संग प्राप्त हुआ क्योंकि उन्हीं के गांव में पास में ही जो है वो चार या तीन भक्ति वेदांत वहां पर रुके थे और चार महीने उनको संगत प्राप्त हुई इन महात्माओं की. बाकी आठ मास सब साधु संत ट्रेवल करते हैं और प्रचार करते हैं, लेकिन क्योंकि प्रचार की असुविधा के कारण, वर्षा के कारण, मौसम के कारण, वो एक जगह रुक करके और वहीं पर ही भजन करना और कथा करना रुचिकर समझते हैं. तो और श्री चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो भी कुछ हद तक चातुर्मास्य का पालन करते थे. एक दूसरे दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, चातुर्मास के अंदर बहुत सारे उत्सव आएंगे. आज से चालू हो गया तो अभी उत्सवों की श्रृंखला चालू होगी. कई सारे मतलब भगवान के अवतारों के, भगवान स्वयं कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, बलराम पूर्णिमा, श्रीमती राधारानी का प्राकट्य दिवस, ललिता देवी का प्राकट्य दिवस, श्री रूप गोस्वामी का प्राकट्य दिवस, श्री भक्ति विनोद ठाकुर का प्राकट्य दिवस, प्राकट्य तिरुभाव नामाचार्य हरिदास ठाकुर का, फिर वामन देव का, उसके बाद में प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस आएगा, प्रभुपाद तिरुभाव भी आएगा कार्तिक के अंदर, फिर कार्तिक का तो पूरा महीना ही उत्सव है दामोदर मास. तो ऐसे ऐसे बहुत सारे उत्सव चातुर्मास में आएंगे ताकि भक्त या जो भगवान की पूजा करना चाहते हैं उनके लिए मैराथन पार्टी, फिर 4 मंथ ऑफ सेलिब्रेशन, सो दैट कृष्णा इज हैप्पी. इसलिए अवर पार्टी इज नॉट फॉर अवर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन बट टू मेक कृष्णा हैप्पी, है ना. तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है जहां पे हमको प्रेरणा मिलती है कि चार महीने में कुछ हम व्रत लेकर के, है ना, कुछ तो तपस्या पालन करके जो है भगवान के प्रिय बनने का प्रयास करें, है ना, भगवान की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें. तो श्री चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद में चातुर्मासी की प्रथा काफी लुप्त सी होने लगी थी. और जो है उसका मुख्य एक कारण था क्योंकि जो प्राकृत सहजिया लोग थे महाप्रभु के जाने के बाद में, तो उन्होंने ऐसा प्रोपागेंडा किया कि ये एक कर्मकांड विधि है. ऑल दो सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास इत्यादि में इसके बारे में लिखा है. तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने इसीलिए बहुत ही कठोरता से चातुर्मास का पालन किया कुछ समय तक, है ना. और जितना मतलब चातुर्मास के अंदर अलग अलग व्रत की कैटेगरी में बताया गया है, पार्शियल या फुल इत्यादि, लेकिन भक्ति ठाकुर ने बहुत ही स्ट्रिक्टली जो हाइएस्ट कैटेगरी है वो दिन में एक बार ही केवल संध्या सूर्यास्त से जस्ट पहले वो जो चावल है उसको ही अपने हाथ से पकाए हुए चावल को, उसके थोड़ा सा घी कुक करते थे, कोई नमक नहीं, कोई हल्दी नहीं बस, और उसको जमीन पर गिरा के गाय की तरह, जैसे गाय खाती है एक गो ग्रास, उतना ही लेते थे और एक बार में जितना ले सकते थे केवल, बस हाथ नहीं यूज करते, चम्मच नहीं यूज करते, कोई प्लेट नहीं. ऐसे चतुर्मास का उन्होंने पालन किया. और उन्होंने फिर शरीर की सारी आवश्यकताओं अर्थात हेड शेविंग करना, दाढ़ी करना, नाखून काटना, कितना भी है वो सब जो है छोड़ दिया करना. वो जमीन पर सोते थे, ना तकिया लेते थे, ना बिस्तर लेते थे, ना इवन एक चटाई भी नहीं लेते थे. और ऐसा प्रयास उन्होंने भक्ति ठाकुर ने किया. मुख्यतः वो जो कर्मकांडियों के प्रोपोगेंडा, सहजियों के प्रोपोगेंडा को नलिफाई करने के लिए बेसिकली, लेकिन ऐसा करने से उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हुआ. तो वो बहुत ही कमजोर हो गए, दुबले पतले हो गए. और इस प्रकार से शरीर की आवश्यकताओं को नहीं ध्यान रखने के कारण भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो है वो काफी बीमार पड़ गए. और ठाकुर भक्ति विद्वान ने फिर उनको मना कर दिया, आपसे आपको नहीं करना था परमात्मा का पालन. और कि ऐसे सेल्फ डिनाइल की, मतलब सही एक भाषा में बोला जाए तो ऐसे आत्महत्या करने की जरूरी नहीं है, है ना, तो इसकी जरूरत नहीं है. और उसके बाद से सरस्वती ठाकुर ने भी इस चातुर्मास का व्रत त्याग दिया. अब जहां तक हमारे इस्कॉन में प्रभुपाद जी के संबंध की बात आती है, तो प्रभुपाद ने कोई खास बढ़ावा चतुर्मास को दिया नहीं इन व्रतों को, पर प्रभुपाद ने दिया सेकेंडरी रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना। तो मेरे को केवल तीन ही पत्र प्रभुपाद के मिले इससे रिलेटेड, मैं तीनों पत्र आपके सामने पढ़ देता हूँ। पहला लिखा हिमावती माता जी को एक तो उन्होंने प्रश्न लिखा हुआ कि माता जी का चतुर्मास पालन कर सकती हैं, और कुछ प्रश्न लिखा होगा, वो लेटर तो नहीं है, लेकिन प्रभुपाद का जो उत्तर है वो इस प्रकार से है, फॉर योर हेयर यू कैन ट्राई अ लिटल कैस्टर ऑयल, सो फॉर द मिल्क फास्ट इफ पॉसिबल यू कैन ऑब्जर्व इट, बट दीज थिंग्स आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, फॉर प्रीचिंग वर्क वी हैव टू मेक सो मेनी एडजस्टमेंट्स है ना। अर्थात माता जी हैं तो उनको बोला कैस्टर ऑयल समझते हैं, इरंडी का तेल जो होता है ना, उसमें कुछ खुशबू नहीं होता, उसके अंदर थोड़ा सा दुर्गंध ही आता है, बल्कि अगर आपने किसी ने इस्तेमाल किया हो, जनरली एक मेडिसिन के रूप में लेते हैं, उसे दूध में डाल के लिया करते हैं इरंडी का तेल, तो वो बोला कि आप ये यूज कर सकते हो बाल के लिए, ऐसा नहीं कि बादाम का तेल या चमेली का तेल या ऐसा खुशबू वाला वो नहीं। और अगर मिल्क का फास्ट खाली दूध पर रखा था रख सकते हो, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रचार करना, क्योंकि आजकल तो बारिश है, चाहे कुछ भी कोई भी सीजन है, गाड़ी है, रोड्स है, हाईवेज है, बारिश भी सीजन में आती नहीं है, फ्लाइट्स हैं, ट्रेन्स हैं, कोई हमारा ट्रैवलिंग छूटता रही है। वो एक वैदिक काल की प्रथा थी जिसमें साधुगण एक जगह रुक करके और भजन करते थे, कथा किया करते थे। फिर दूसरा एक लेटर है और मधुदीक्षा स्वामी को प्रभुपाद लिख रहे हैं, यस इट इज ऑल राइट फॉर यू टू ऑब्जर्व चातुर्मास्य इफ यू कैन मैनेज इन द मॉर्निंग, यानी मतलब था आप प्रातःकालीन कार्यक्रम पूरा कर सकते, ऐसे लिखे मैनेज द मॉर्निंग्स, मतलब ये चातुर्मास के बाद सुबह में कर सकते हो या मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा कर सकते हैं, लेकिन एक चीज बोला प्रभुपाद ने, डीटी शुड बी ऑफर्ड अ रेगुलर प्रसाद, ऐसा नहीं डीटीज को भी चातुर्मास करा रहे हो केवल चावल और घी डाल के, ऐसा नहीं। द डीटीज आर नॉट डिवोटी, दे आर लॉर्ड्स, बट इट इज अ फैक्ट दैट लॉर्ड चैतन्य ऑब्जर्व्ड एज वी फाइंड इन चैतन्य चरितामृत, बट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर देम टू फॉलो देयर इन योर टेम्पल, ठीक है आपके मंदिर में आपको करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि सबसे बड़ी बात तो चातुर्मास में है गुरु के आदेश पे किया जाना चाहिए, विमसी के लिए क्या क्या श्रुति स्मृति पुराण आदि पांच रात की विधि बिना एकांत की हरिहर भक्ति उत्पाद व कल्पते, हम इसको हमें भी देखते हैं, बहुत सारे भक्त स्वतंत्र रूप से जब इस प्रकार व्रतों का पालन करते हैं तो साधारण भक्त बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्या सही है क्या गलत है ना, क्योंकि जब सनातन गोस्वामी का याद प्रसंग है, सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महापुर से प्रश्न पूछा जगन्नाथपुरी में, तो महापुर ने बोला भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण धीरे धरे प्रेम शक्ति तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे पाप नाम लैले पाए प्रेम धन। तो ऐसा कंफ्यूजन आने लगता है कि महत्वपूर्ण क्या है, हरे कृष्ण का जप महत्वपूर्ण है, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा है, या ऐसा बड़ा बड़ा प्रोपोगेंडा जरूरी है तपस्या व्रत इत्यादि। तो ऐसे बहुत सारा कंफ्यूजन फैल जाता है इसकी वजह से जब भक्त स्वतंत्र रूप से इन नियमों का पालन करते हैं। हम देखते भी हैं इस्कॉन का इतिहास है, वर्तमान है, भविष्य पता नहीं कैसा रहेगा, लेकिन तो इसलिए स्ट्रिक्टली इसको गुरु के आदेश पे किया जाना चाहिए, नहीं तो कृष्ण प्रसन्न नहीं होने वाले। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं है मंदिर में इसका पालन करने की, क्योंकि प्रचार महत्वपूर्ण है। से मधुदीक्षा स्वामी को जो है प्रभुपाद ने एक और लेटर लिखा, रिगार्डिंग योर कमिंग टू इंडिया एंड ट्रैवलिंग विद मी, ओह यस यू आर वेलकम, इट इज वेरी गुड दैट यू हैव बीन ऑब्जर्विंग चातुर्मास्य, आई हैव ऑलरेडी सेंट थ्रू ब्रह्मानंद स्वामी अ टेलीग्राम अप्रूविंग योर ट्रैवल प्रोग्राम, दैट्स वेरी नाइस दैट यू विल ट्रैवल टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इंडोनेशिया थाईलैंड मलेशिया हांगकांग एंड ऑल्सो चाइना, दैट इज वेरी नाइस। तो मैं लिखा ठीक है अच्छा चातुर्मास्य पालन कर रहे हो लेकिन आप ट्रैवल करो और प्रचार भी करो, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति चारू स्वामी महाराज चतुर्मास्य जब पालन कर रहे थे, प्रभुपाद मायापुर आए, देखा वो एक टैंक खा रहे हैं, दुबले पतले हो गए थोड़े, प्रभुपाद राधा माधव का प्रसाद मंगाया और बोले खाओ इडली। अब भक्ति चारू महाराज अभी क्या करते, गुरु बोल रहे हैं तो छात्रवास का व्रत जाए भाड़ में, पहले गुरु की प्रसन्नता महत्वपूर्ण है, यस्य प्रसादा भगवत प्रसाद यस्य प्रसादा नगति कुतो भी। तो एज डिवोटीज हम क्या प्रयास कर सकते हैं चतुर्मास्य के अंदर, हमारा मुख्य होना चाहिए वो कार्य जो श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करे, और चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न कर सकते हैं गुरु परंपरा को प्रसन्न करके, श्री प्रभुपाद जी को प्रसन्न करके। तो हम इस चतुर्मास का पालन कर सकते, जय श्री जगन्नाथ बलि सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौरताय की जय, राधिका रमन की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो एज डिवोटीज हमें ये तीन मुख्य विधियों का पालन करना चाहिए, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा, किस प्रकार हम ध्यानपूर्वक बैठ कर जप कर सकते हैं और वैष्णवों की सेवा कर सकते हैं विशेषकर, क्योंकि वैष्णवों को वैष्णव देखना बहुत सबसे बड़ी तपस्या है और उसके बाद जीवे दया, किस प्रकार बद्ध जीवों का उद्धार कर सकते हैं। और तो इस प्रकार से जो है ये चतुर्मास के जितना मैं कलेक्ट कर पाया बोनाफाइड सोर्सेज से वो चातुर्मास के बारे में था। और आज बहुत शुभ दिन है श्री सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी बहुत ही प्रिय थे श्री चैतन्य महाप्रभु को, रूप और सनातन गोस्वामी को। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया है, कुल चैतन्य चरितामृत में 61 अध्याय है, 16 आदि लीला में, 25 मध्य लीला में और 20 अंत लीला के अंदर। तो 61 अध्याय में से लगभग 7 अध्याय सनातन गोस्वामी को डेडिकेटेड है। इन अदर वर्ड्स 9 बुक्स हैं चैतन्य चरितामृत के अंदर, 2 आदि 2 अंत और 5 मध्य लीला के अंदर। तो 9 में से ऑलमोस्ट एक बुक अगर देखा जाए परसेंटेज वाइज इज प्रैक्टिकली डेडिकेटेड टू सनातन गोस्वामी। इतना वर्णन है श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का सनातन गोस्वामी का। और इनके बाद यदि किसी दूसरे मुख्य पार्षद का चैतन्य चरितामृत वर्णन आएगा तो मेरे हिसाब से, मेरी कैलकुलेशन है, खाली हुआ रूप गोस्वामी परहैप्स, है ना। और अद्वैताचार्य का नित्यानंद प्रभु और समेशन स्वरूप दामोदर गोस्वामी, दे आर द मोस्ट डिस्क्रिप्टिव। चैतन्य भागवत के अंदर नित्यानंद प्रभु का बहुत वर्णन है ना, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं का बहुत वर्णन है। तो लगभग 7 अध्याय सनातन गोस्वामी पर डेडिकेटेड है, और मुख्यतः उसमें से 5 अध्याय तो लीला हुई वाराणसी के अंदर, जहां सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी श्री चैतन्य महाप्रभु ने। और शिक्षा तो 5 अध्याय है, तो अभी आधे घंटे के अंदर कुछ कवर नहीं कर सकते उसके अंदर से। तो यहाँ पे अधिकांश बहुत पुराने भक्त हैं, तो ऑन दिस डे आई रिक्वेस्ट कि जो चैतन्य महाप्रभु की रूप और सनातन का डीलिंग्स हैं, वो आप कृपा करके चैतन्य चरण जरूर पढ़िएगा। वो इतना मधुर लीला है, जैसा कविराज गोस्वामी ने डिस्क्राइब किया है, सो स्वीट, यू नो द वे श्री चैतन्य महाप्रभु, ऑफकोर्स ऑल द डिवोटीज इज वेरी स्वीट, बट स्पेशली रूप एंड सनातन, स्पेशली हरिदास ठाकुर ऑल्सो, वो उसका ज्यादा वर्णन चैतन्य भागवत के अंदर, लेकिन चैतन्य चरितामृत में एक्सट्रीमली स्वीट डिस्क्रिप्शन ऑफ डीलिंग्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु विद रूप एंड सनातन गोस्वामी। और तो आप कृपा करके पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत जल्दी एक ग्रंथ लिखा था, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। तो ये ग्रंथ में 5 लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाएं दी मुख्यतः, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशन सरस्वती और रामानंद राय। तो ये 5 लोगों के टीचिंग्स को प्रभुपाद ने टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में लिखा, जो प्रैक्टिकली भक्ति का सारा सिद्धांत प्रस्तुत करती है। तो उसको भी पढ़ सकते, उसके अंदर बहुत मेजर सेक्शन है सनातन शिक्षा के ऊपर जो प्रभुपाद जी ने वहां पे किया है, क्योंकि सबसे शिक्षा भी सनातन गोस्वामी को दी है। तो ये जो श्लोक लिखे हैं, शिक्षा देने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को एम्पावर किया। पूर्वे प्रयागे आमी रसे रह विचारे तुम्हार भाई रूपे कैलु शक्ति संचारे। तो शिक्षा का एंड कर रहे हैं यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु, और उनको आज्ञा दे रहे हैं अभी, सर्विस तद्विधि प्रणिपात है ना, परिप्रश्न से हो गया, प्रणिपात हो गया, परिप्रश्न हो गया, अभी सेवा का मौका। तो इसके पूर्व मैं तुम्हारे भाई रूप गोस्वामी को इन रसों को समझने की शक्ति प्रदान कर चुका हूँ। प्रयाग में दशाश्वमेध घाट पर शिक्षा देते हुए मैंने ऐसा किया है, मतलब रूप को तो मैंने शिक्षा दे दिया है, एम्पावरमेंट दे दिया है भक्ति रस को समझने के लिए, और वृंदावन भेज दिया है, अभी तुम्हारा बारी है, क्या करना है तुम्हें। तो वो जो है इंस्ट्रक्शन सनातन गोस्वामी को इसमें दिया गया है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तुमिह करिह भक्ति शास्त्र प्रचार मथुराय लुप्त तीर्थेर करिह उद्धार। वृंदावन कृष्ण सेवा वैष्णव आचार भक्ति स्मृति शास्त्र करे करिह प्रचार। मैं कह रहा आप पढ़ते हैं क्योंकि समय कम है, और सनातन गोस्वामी का इतना सारा लीला है उसको डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है, तो मैंने कुछ चूज किया है, वो भी मुश्किल लग रहा है कवर कर पाए। तो हे सनातन, तुम भक्ति के प्रमाणिक शास्त्रों का प्रचार करना, ये पहला आदेश तुम ही करी है भक्ति शास्त्र का प्रचार। दूसरा, मथुरा या लुप्त तीर्थेर करी है उद्धार, और मथुरा जिले के लुप्त तीर्थ स्थलों को पुनरुद्धार करना। दो, तीसरा, वृंदावन कृष्ण सेवा, वृंदावन में भगवान श्री राधा, भगवान कृष्ण तथा राधा रानी की सेवा स्थापित करना। तीन, चौथा, भक्ति स्मृति शास्त्र करी है प्रचार, भक्ति शास्त्रों का भी संकलन करना और वृंदावन से भक्ति संप्रदाय का प्रचार करना। तो ये 4 आदेश दिए, तात्पर्य प्रभुपाद की, सनातन गोस्वामी को आदेश हुआ कि भक्ति शास्त्र का प्रचार करें और भक्ति के सिद्धांतों की स्थापना करें। दूसरा, वृंदावन तथा राधा कुंड जैसे लुप्त तीर्थस्थलों की पुनः स्थापना करें। तीसरा, मंदिर पूजा की वृंदावन शैली की स्थापना करें और मंदिरों में अर्चा विग्रहों की स्थापना करें। जिस प्रकार रूप गोस्वामी ने गोविंद जी और सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन जी मंदिर की स्थापना की। और चौथा वैष्णव आचरण की व्याख्या करें, जैसा कि सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में किया। इस प्रकार श्री सनातन गोस्वामी को वैष्णव संप्रदाय की स्थापना करने की शक्ति प्रदान की। अभी भी यदि किसी भक्त सौभाग्य होता वाराणसी जा सकते हैं, वहां पे दशाश्वमेध घाट है जहाँ पे शिक्षा दी गई, बहुत सुंदर वहां गंगा जी हैं और उस घाट पे श्री चैतन्य सनातन गोस्वामी को शिक्षा प्रदान की थी दशाश्वमेध घाट पे। यही प्रकाशन सत्र का उद्धार भी किया था, वो भी जगह है अभी भी तो, और बिंदु माधव मंदिर है। तो इस संबंध में श्री श्रीनिवास आचार्य षड गोस्वामी अष्टक में कहा है, नाना शास्त्र विचार नैक निपुण सद्धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नन्देन मत्तालिकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। मैं छह गोस्वामी अर्थात श्री सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, श्री जीव तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की सादर वंदना करता हूँ, जो समस्त मानवों के लाभार्थ शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों की स्थापना करने के उद्देश्य से समस्त शास्त्रों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने में अत्यंत निपुण है। इस प्रकार वे तीनों लोकों में सम्मानित है और शरण में जाने योग्य है, क्योंकि वे गोपी भाव में निमग्न रहते हैं और राधा तथा कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति करने में लगे रहते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ सनातन गोस्वामी ने लिखे हैं, विशेषकर दो मुख्य ग्रंथ का यहाँ कई सारे ग्रंथों की डिस्क्रिप्शन कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, उनमें से दो बहुत मुख्य ग्लोरीफाई कर रहे हैं, एक हरि भक्ति विलास और दूसरा बृहद भागवतामृत। उसका कविराज गोस्वामी ने बहुत 3-4 पायर के अंदर ग्लोरिफिकेशन किया है बृहद भागवतामृत ग्रंथ का। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य जो हम सबके लिए है, यह कृष्ण भागवत आंदोलन छह गोस्वामियों की विशेषतया श्री सनातन गोस्वामी तथा श्री रूप गोस्वामी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला है। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के निष्ठावान अनुयायियों को वृंदावन संप्रदाय भगवान की भक्तिमय सेवा का सारे विश्व में प्रचार करने के अपने महान दायित्व को समझना चाहिए। अब तो वृंदावन में हमारा एक सुंदर मंदिर है, अतः गंभीर जिज्ञासुओं को इसका लाभ उठाना चाहिए। मैं आशान्वित हूँ कि हमारे अनुयायियों में से कोई ना कोई अनुयायी इस दायित्व को ग्रहण करके लोगों को कृष्ण भावनामृत शिक्षा देकर मानवता की सर्वश्रेष्ठ सेवा कर सकता है। जय श्री प्रभुपाद की। तो हम में से जो भी अपने आप को काउंट करते हैं, वी वांट टू बी फेथफुल सर्वेंट्स ऑफ श्री प्रभुपाद। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारे संप्रदाय के निष्ठावान अनुयायियों को उनका ये दायित्व है कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के द्वारा के जो दी गई शिक्षाओं को आगे प्रचार करें और मानवता की सर्वश्रेष्ठ सेवा करें। तो सनातन गोस्वामी के बहुत सारी लीलाएं हैं, उनकी वृंदावन मतलब प्री महाप्रभु से मीटिंग की लीला है, महाप्रभु से मिलने की लीला का बहुत सुंदर वर्णन है, रामकेले के अंदर जेल से भागने की लीला है, वाराणसी के अंदर चैतन्य महाप्रभु के साथ में लीला है, उसके बाद में ब्रज में जाने की लीला है, फिर वापस जगन्नाथपुरी में आने की लीला है और फिर वापस ब्रज में जाकर सेवा करने की लीला है। तो देयर आर सो मेनी एपिसोड ऑन विच वी कैन डिस्कस, बट आई थॉट ऑफ टू एस्पेक्ट सनातन गोस्वामी जिसके लिए चर्चा करेंगे। वो है कि श्री चैतन्य महाप्रभु को सनातन गोस्वामी क्यों इतने प्रिय थे। तो उसके दो मुख्य कारण जो मेरे को रीडिंग करके समझ में आया, वो है एक उनकी विनम्रता और दूसरा फॉलोइंग ऑफ रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। क्योंकि देखिए उन्हीं को महाप्रभु लिख बोल रहे हैं कि आप वैष्णव आचार्य के कैसा आचरण होना चाहिए उसका संकलन करो, तो आचार्य को तो आचार से अपने आचरण सिखाना पड़ेगा। तो ये दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब बनारस में चैतन्य महाप्रभु से मिले तो प्रभुपाद जी इसके ऊपर बहुत लेक्चर दिए। अगर आप चैतन्य चैतन्य लेक्चर खोलेंगे तो मध्य लीला चैप्टर 20 के ऊपर सो मेनी लेक्चर श्री प्रभुपाद जी गिवन, दे वेरी हैवी। तो उसके अंदर प्रभुपाद ये वाला श्लोक बहुत बार रिकॉर्ड करते हैं, तबे सनातन प्रभु चरण धरिया दैन्य विनती करे दंते तृण लैया नीचे जाति नीचे संकी पतित अधम कुविषय कुपे पड़ी गोनाई नु जनम। बोल रहे हैं कि सनातन गोस्वामी महाप्रभु चरणों में दंडवत गिरे और दांत तिनके का रखते हुए विनती कर रहे हैं बड़ी दैन्यता के साथ, नीच जाति नीच संगी के मैं बहुत ही नीच कुल में मेरा जन्म हुआ है, नीच पति अधम हूं मैं बिल्कुल, और यवनों की मुझे नौकरी करनी पड़ी, कुविषय कूपे पड़ी गोनाइन जन्म, और मैं विषय कूप में पड़ा हुआ हूँ, मंत्री का पद स्वीकार किया है, मेरा जन्म बिल्कुल व्यर्थ है। और सनातन गोस्वामी की जो नम्रता है ये बहुत बारम्बार यहाँ उनके लीलाओं में रिफ्लेक्ट होती है। और महाप्रभु अपने एक्शंस के द्वारा उस सनातन गोस्वामी को ह्यूमिलिटी को बारंबार प्रकाशित करते हैं। तो मैं थोड़ा फास्ट चलता हूं, अगर फास्ट चलूंगा तो थोड़ा सा अब भी फास्ट एसिमिलेट करने का प्रयास कीजिएगा। तो ऐसा है, अंत्य लीला अध्याय 4, जगन्नाथपुरी में महाप्रभु से सनातन गोस्वामी की भेंट। तो क्या हो गया कि महाप्रभु बनारस में शिक्षा दी, सनातन गोस्वामी वृंदावन गए, और कुछ समय बाद फिर चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जगन्नाथपुरी की ओर चले। तो जगन्नाथपुरी जब आ रहे थे तो झारखंड के रास्ते से जब वो निकले तो वहां पे उन्होंने जो है क्योंकि उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता था और कुछ खराब पानी जो है उन्होंने पी लिया, जिसके कारण उनको रोग हो गया, चर्म रोग, और खुजली के घाव हो गए उनके शरीर पे, और उससे बारम्बार ऐसा पस निकलता था, बहुत सारा पस होता था। तो सनातन गोस्वामी ने विचार किया कि मैं बहुत नीच जाति का हूँ और मेरा शरीर भी इतना खराब हो गया है, मैं जगन्नाथपुरी पहुंच के चैतन्य महाप्रभु के सामने रथ यात्रा के समय रथ के आगे कूद के आत्महत्या कर लूंगा। तो ऐसा अपने मन में विचार किया, किसी को बताया नहीं। फिर जगन्नाथपुरी जब पहुंचे तो जो है क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि देखो जगन्नाथपुरी जाऊंगा ना तो मैं जगन्नाथ जी के दर्शन कर पाऊंगा ना चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर पाऊंगा, क्योंकि अब मेरा शरीर इतना खराब हो गया है और मंदिर और अब मैं इतना बीमार हो गया हूं तो मंदिर के पास जाने की शक्ति नहीं होगी, क्योंकि मंदिर के जो सेवक हैं जगन्नाथ जी के यदि मेरा स्पर्श कर लेंगे तो फिर क्या होगा, मैं मेरे से अपराध होगा, तो इसीलिए अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लेता हूं। तो ऐसा सोच विचार करके सनातन गोस्वामी जो है चैतन्य नीलातल पहुंचे और वहां हरिदास ठाकुर के पास में रुके। हरिदास ठाकुर सिद्ध बकुल में रुकते थे और कभी, क्योंकि वो भी यमन परिवार में जन्म हुआ था, तो कभी जगन्नाथ मंदिर में जाने का प्रयास नहीं करते थे, क्योंकि मैं बहुत ही नीच हूं, मैं कैसे जगन्नाथ जी के मंदिर में जा सकता हूं। ऐसे ही रूप और सनातन गोस्वामी का भी यही आचरण बारंबार देखने को मिलता था। तो फिर क्या हो गया, चैतन्य महाप्रभु के पास सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर के पास जब रुके, चैतन्य महाप्रभु रोज आते थे वहां पे, तो आए और तुरंत जो है दंडवत किया चैतन्य सनातन गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, आलिंगन किया उनका। तो सनातन गोस्वामी पीछे हट गए और बोला, प्रभु मेरा स्पर्श ना करें, मैं आपके चरण कमलों में पड़ता हूं, मैं नीच जाति में उत्पन्न होने के कारण मनुष्य में सबसे अधम हूं, इसके अतिरिक्त मुझे खुजली का रोग है, वैसे ही अधम हूं, और इसके बाद मेरे चैतन्य पास आपके शरीर में टच हो जाएगा, तो आप मत कीजिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, बलात्कार प्रभु तारे आलिंगन कैला कंडुक ले महाप्रभु श्रीरंग अंगे लगीला, और महाप्रभु ने बिल्कुल बलपूर्वक उन्हें आलिंगन कर लिया। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी का सबसे परिचय कराया, भक्तों से मिलाया कि ये कौन है सनातन गोस्वामी, क्योंकि अभी तक जानते नहीं थे सनातन गोस्वामी को, बाकी लोग नहीं जानते थे, क्योंकि वो महाप्रभु से मिले पहले रामकेली में, फिर जेल में थे, और जेल से बनारस, बनारस से वृंदावन, और अब जगन्नाथपुरी आए हैं। तो अन्य सब पार्षद को गोविंद इत्यादि जानते नहीं थे अधिकांश भक्त लोग, तो सनातन गोस्वामी से को इंट्रोड्यूस कराया, तो समझ गए कोई स्पेशल व्यक्ति है, महाप्रभु इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। और फिर जो है फिर महाप्रभु वार्ता करने लगे, उनसे बातचीत करने लगे और बताया कि आपके भाई रूप गोस्वामी 10 दिन पहले यहां से गए हैं अभी, और 1 साल लगभग वो यहां पे थे, और उसके बाद बताया कि आपके भाई अनुपम गोस्वामी जो हैं तीसरे भाई थे, उनका मृत्यु हो गया है, वो रामचंद्र के महान भक्त थे, ऐसे उनके बीच में वार्ता हुआ। और फिर सनातन गोस्वामी जो है एक दिन, तो ऐसे सबके बीच में वार्ता हुई, फिर एक दिन सनातन गोस्वामी महाप्रभु मिलने के लिए आए, क्योंकि रोज आते थे वो तो हरिदास ठाकुर का प्रसाद लेके, उपलभोग का प्रसाद लेके रोज हरिदास ठाकुर, अभी 2 जनों का प्रसाद लेके आते थे जितने वहां पर, एक सनातन गोस्वामी के लिए भी, हरिदास ठाकुर के लिए भी। तो एक दिन सनातन गोस्वामी को कहने लगे, कहते देखो सनातन, यदि कोई आत्महत्या करके कृष्ण को प्राप्त कर लेता तो मैं तो 1 क्षण के अंदर 1000 शरीर त्याग देता। तो उनको थोड़ा झटका लगा, बोले शरीर त्यागने से कोई कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता, कृष्ण तो भक्ति से प्राप्त है, उन्हें प्राप्त करने का कोई अन्य उपाय नहीं है। आत्महत्या जैसे कर्म तमोगुण से प्रेरित होते हैं, एवं तमो तथा रजोगुण में मनुष्य यह नहीं समझ सकता कि कृष्ण कौन है, तो जब तक कोई भक्ति संपन्न नहीं करता तब तक वह अपने सुप्त कृष्ण प्रेम को जागृत नहीं कर सकता, और उस सुप्त प्रेम को जागृत किए बिना कृष्ण को प्राप्त करने का अन्य कोई साधन नहीं। तो महाप्रभु प्रेम से उन्हें डांट रहे हैं, बोले अरे भाई तुम आत्महत्या करने का सोच रहे हो लेकिन क्या तुम्हें कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे उससे, बोले कदापि नहीं, कृष्ण केवल भक्ति से प्राप्त है। और फिर दूसरा वो हरिदास ठाकुर देव देख के बोलते, तो सनातन गोस्वामी बड़ा सरप्राइज हुआ कि महाप्रभु तो जानते हैं मेरे मन में क्या है, और उनको यह निर्णय अच्छा भी नहीं लगा, कि मैं आत्महत्या करने की सोच रहा हूँ। फिर जो है सनातन गोस्वामी ने उनके चरणों में गिरे और बोला कि आप सर्वज्ञ हैं, कृपालु हैं, स्वतंत्र परमेश्वर हैं, मैं तो कठपुतली की तरह हूँ, जैसा आप चाहें वैसा ही नाचता हूँ। तो जो है नीच कुल में जन्मा हूँ और मैं सबसे नीच हूँ, घृणित हूँ, सारे दुर्गुण हैं मेरे अंदर, मैं पापी हूँ। यदि आप जीवित रखना चाहते हैं मुझे तो उससे आपको क्या लाभ होगा, बताओ तो सही, मेरे जीवित रहने से कुछ फायदा होगा आपको? फायदा होगा तो जीवित रहता हूँ, मैं तो कठपुतली हूँ। तो महाप्रभु बोले उनको, क्या बोले? प्रभु कहे तुम्हार देह मोरे निज धन, तुम्हें मोरे करी जाचे आत्मसमर्पण। देखो तुमने मेरे को समर्पण किया तो अभी तुम्हारा देह किसका है? मेरा देह हो गया, तो फिर तुम दूसरे की संपत्ति को क्यों नष्ट करना चाहते हो? अभी तुम्हारा शरीर मेरा है तो तुम क्या ये विचार नहीं कर सकते? मतलब थोड़े सरके हुए हो क्या? अचूक कुचित है, अनुचित क्या है? इतना भी कॉमन सेंस नहीं है? तुम वहां पर ऐसा बोल रहे हैं और बोल रहे तुम्हारे शरीर अनेक आवश्यक कार्य संपन्न कराने के लिए मेरा प्रमुख साधन है, तुम्हारे शरीर के द्वारा मैं अनेक कार्यों को पूरा करूंगा। और फिर बताते हैं कि देखो मैं क्या क्या करूंगा, जो अभी आदेश दिया है कि मैं तो माता के आदेश जगन्नाथपुरी में फंस गया, अभी कहीं जा नहीं सकता, लेकिन मेरी बहुत इच्छा है कि मथुरा और वृंदावन जैसे तीर्थ स्थलों का पुनर्जागरण हो, भक्ति शास्त्रों का लेखन हो, इसलिए तुम दोनों भाइयों के द्वारा मैं वो कार्य कराना चाहता हूँ जो है। तो इसीलिए मथुरा वृंदावन मेरा अति प्रिय धाम है, मैं कृष्ण भारत का प्रचार करने के लिए वहां अनेक कार्य करना चाहता हूँ। अर्थात हेडक्वार्टर में मैं बैठा हूँ जगन्नाथपुरी में और वृंदावन मथुरा में सेंटर खोलना चाहता हूँ, मेरा फ्रेंचाइजी खोलने वाला, संभालेगा कौन? तुम संभालो से वहां जा करके। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने उनको बोला और सादर गोस्वामी ने बोला मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, आप अपने हृदय के भीतर जो गहन विचार करते हो उसे कोई नहीं समझ सकता, आपके मन में क्या है, यू नो वी कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो फिर जो है तो हरिदास ठाकुर से फिर महाप्रभु ने बोला सरकास्टिकली सनातन गोस्वामी के बारे में, बोला हे प्रिय हरिदास जरा मेरी बात सुनो, यह भद्र पुरुष पराई संपत्ति को नष्ट करना चाहता है। क्या बोल रहे हैं? यह कि सज्जन है और काम दूसरों के कर रहा है ना, सरकास्टिकली ही स्पीकिंग लाइक दैट। जिसे पराया धन सौंपा जाता है वह न तो उसे वितरित करता है न ही उसे उपयोग में लाता है, इसलिए उससे कहो कि ऐसा अवैध कार्य ना करे। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया हम अपनी क्षमताओं पर झूठे ही गर्व करते हैं, वस्तुतः हम आपके गहन विचारों को समझ नहीं सकते। अर्थात व्हाट इज प्रैक्टिकल फॉर अस, किसी चैतन्य महाप्रभु गुरु परंपरा हमारे द्वारा कुछ भी कराना चाहे तो वो उनकी इच्छा है, उसमें हमारी योग्यता नहीं है। कभी हम बोले अरे मैंने इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, इतना फंड कलेक्शन कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, इतना प्रचार कर दिया, और जो गुरु परंपरा जितने काल तक हमसे कुछ कराना चाहते हैं उतने तक हो जाएगा, उसके बाद में जैसे मान लो अभी तो हाथ है हमारे पास में, इनमें शक्ति है, ऊपर उठा लिया, नीचे रख दिया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, एक कल मान लो भगवान शक्ति खींच ले, पैरालिसिस हो जाए तो क्या होगा? कोई शक्ति नहीं है इसको एक सेंटीमीटर भी उठाने की, है कि नहीं? सो इट्स ऑल मर्सी, इट्स ऑल एम्पावरमेंट, वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ इट बेसिकली, है ना। तो इसीलिए ये एक शिक्षा इनसे मिलती है। उसके बाद में हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी का गुणगान करते हैं कि देखो आप कितने प्रिय हो, सनातन गोस्वामी गुणगान दोबारा करते हैं, बोले कि आपके द्वारा नामाचार्य बनाया आपको, महाप्रभु नाम का प्रचार करना चाहते हैं लेकिन आपको नामाचार्य बनाया और इसलिए यवनपुर में आपको जो है वो किया, लेकिन अभी भी सनातन गोस्वामी के शरीर पे वो सारे वो थे, क्या बोलते हैं, घाव अभी भी थे पूरे। तो फिर रथ यात्रा का उत्सव आ गया, आत्महत्या तो कर रहे थे, तो महाप्रभु की सुंदर नृत्य देखा तो बड़े चकित हो गए जो है, सभी भक्तों को देखा उन्होंने, और फिर रथ यात्रा हो गया, सारे भक्त बंगाल चले गए लेकिन सनातन गोस्वामी वही रह लिए, अभी सारे पास चले गए, तब तो महाप्रभु की ज्यादा अटेंशन मिलेगी उन्हें क्योंकि सारे पार्षद पहले बटी हुई थी। तो फिर जो है अब एक दिन महाप्रभु ने परीक्षा ली उनकी, सनातन गोस्वामी पहुंचे लगभग अप्रैल के महीने में पहुंचे थे जगन्नाथपुरी, और मई जून के महीने के अंदर महाप्रभु का लंच लेने के लिए गए टोटा गोपीनाथ के पास, ये जगह यमेश्वर टोटा सी बीच के पास में जगह है, आज भी मंदिर है, बताया जाता है कि जगन्नाथपुरी जो नीलाचल पहाड़ी है उसका वो बेस है, शिव जी का मंदिर है। तो महाप्रभु वो गार्डन के अंदर प्रसाद ले रहे थे, तो उन्होंने आदेश बताया सनातन को बुलाओ यहाँ पे, तो सनातन को जैसे आदेश मिला कि महाप्रभु बुला रहे हैं, तो सनातन गोस्वामी तुरंत सिद्ध बकुल से जो है भागे यमेश्वर टोटा की ओर। तो उनके दो रास्ते थे, एक रास्ता था सिंह द्वार के रास्ते से मेन रोड से आते, दूसरा रास्ता था समुद्र के रास्ते से आते। सनातन गोस्वामी कौन से रास्ते से आए? समुद्र के रास्ते। दोपहर के समय जलती हुई बालू, ऊपर तपता हुआ सूर्य, और उसके अंदर सनातन गोस्वामी जो है मध्याहने समुद्र बालू हर्षा अग्नि समा सही पते सनातन करीला गमन। दोपहर के समय समुद्र तट की बालू आग के समान झुलस रही थी, किंतु सनातन गोस्वामी उसी रास्ते से आए, वो भाग करके उसी रास्ते से बिल्कुल भागते भागते आए और जो है उनको बड़ा हर्ष हो रहा था, उनको तो जलन ही नहीं हो रही थी कि मैं इवन उनके पैर में छाले हो गए, बड़े बड़े सपोले हो गए हैं, वो तो जो है आनंद से महाप्रभु ने बुलाया, मेरे चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया है। तो फिर महाप्रभु का जो महाप्रसाद था, जब सनातन गोस्वामी पहुंचे तो गोविंद ने सनातन गोस्वामी को महाप्रसाद दिया और फिर प्रसाद पा लिया सनातन गोस्वामी, फिर चैतन्य महाप्रभु के पास आए मिलने को। और महाप्रभु ने पूछा, प्रभु कहे कौन पथ है आईला सनातन, ते कहे समुद्र पथ है करी लू आगमन। महाप्रभु, तुम कौन से मार्ग से आए? बोले मैं समुद्र पथ से आया। बोले तुम कैसे आए समुद्र के किनारे से, वहां की बालू इतनी गर्म है, तुम सिंह द्वार के सामने से क्यों नहीं आए? तो बोला देखो जो है गर्म बालू में तुम्हारे तहलों तुम्हारे तलवों में सफोले उत्पन्न कर दिए होंगे, अब तुम चल नहीं सकते, तुमने से कैसे सहन किया? तो सनातन गोस्वामी ने उत्पन्न किया, ना तो मुझे अधिक पीड़ा हो रही है, ना मुझे पता लगा कि मेरे पैर में सफोले हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि सिंह द्वार के सामने से आने का मेरे को अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है? क्योंकि मैं बहुत ही जो हूँ नीच जाती हूँ, और अगर जगन्नाथ जी के सेवक मुझे छू लेते तो मेरा सर्वनाश हो जाता, मेरा जगन्नाथ के प्रति अपराध हो जाता। सनातन गोस्वामी और महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुआ उनसे, वेरी प्लीज। और तब बोल रहे हैं ये श्लोक जो आपने फेमस श्लोक आपने सुना होगा, यद्यपि यो तुमि हो जगत पावना तोमा स्पर्श पवित्र है या देव मुनि गण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण मर्यादा पालन है या साधुर भूषण, मर्यादा लंघन लोक करे उपहार इह लोक परलोक दुई है नाश, मर्यादा राखी ले तुष्ट कैले मोर मना तुम्हें ऐसे ना करी ले करे खो न जना। हे प्रिय सनातन, यद्यपि तुम सारे ब्रह्मांड के उद्धारक हो और देवता तथा बड़े बड़े संत तक तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध बन जाते हैं, किंतु वैष्णव शिष्टाचार का पालन और रक्षण करना भक्त का गुण है, वैष्णव शिष्टाचार को बनाए रखना भक्त का आभूषण है। यदि कोई व्यक्ति शिष्टाचार के नियमों का उल्लंघन करता है तो लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, और इस तरह वह इस लोक तथा परलोक दोनों में विनष्ट हो जाता है। तो वैष्णव सदाचार जो है इसको बड़ी शक्ति से एक वैष्णव को पालन करना चाहिए, क्योंकि ये भक्त का आभूषण है। भक्त तो कृष्ण की नजरों में सुंदर होता है, लेकिन जब वो वैष्णव से पालन करता है तो और अधिक सुंदर बन जाता है वो कृष्ण की नजरों के अंदर, श्री चैतन्य महाप्रभु की नजरों में। और चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, तुमने शिष्टाचार का पालन करके मेरे मन को तुष्ट किया है, तुम्हारे अतिरिक्त इस उदाहरण को कौन दिखलाएगा? तो यू नो वी शुड नॉट थिंक कि वैष्णवाचार का पालन करना फॉर्मैलिटी है, यू नो इट्स रिचुअल। रात को सोने से पहले दंडवत करना एक फॉर्मेलिटी है, सुबह उठ के प्रणाम करना गुरु को फॉर्मेलिटी है, वैष्णव को देख के प्रणाम करना एक फॉर्मेलिटी है, या तिलक लगाना फॉर्मेलिटी है, चलो ठीक है एक ही लगा लेता हूँ बाकी तिलक नहीं लगाता, ऐसा नहीं सोना चाहिए। यू नो ब्रश करना, हेड शेविंग करना, ये शेविंग करना, सब स्वच्छ वस्त्र पहनना, ऐसे बहुत सारे नियम हैं, अभी टाइम नहीं है, नहीं तो वो नियम संक्षेप में महाप्रभु ने दिए थे हरिभक्ति सनातन गोस्वामी को। फिर सो मैंने एकादशी का पालन करना इत्यादि, इसको बड़े कठोरता से पालन करना चाहिए। और फिर ऐसा महाप्रभु प्रसन्न हो गए तो क्या किया चैतन्य महाप्रभु ने, फिर सनातन गोस्वामी का आलिंगन किया। अभी पूरे महाप्रभु के शरीर के अंदर फिर वो घाव लग गए जो सनातन गोस्वामी के शरीर पे थे सारा पास। लेकिन सनातन गोस्वामी रोज मना करते चैतन्य महाप्रभु को, रोज महाप्रभु क्या करते थे, बलपूर्वक आलिंगन करते थे। तो सनातन गोस्वामी को बहुत बुरा लगता था कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो फिर वो जगदानंद पंडित से मिले, जगदानंद पंडित को बताया, यू नो ही वाज रिवीलिंग हिज हार्ट कि देखो ऐसा दिक्कत आ रहा है मेरे को। तो जगदानंद पंडित सलाह दी, देखो तुम्हारे भाई रूप और साधन को महाप्रभु ने सेवा कहाँ पे दी थी, बोले वृंदावन में। तो फिर जगन्नाथपुरी में आकर क्या कर रहे हो, कल ही निकल जाओ जगन्नाथपुरी से वृंदावन की ओर निकल जाओ, यू नो तो वो अच्छा रहेगा, तो वहां जाओ तुम्हें सुख मिलेगा, और यहाँ आने का उद्देश्य मिल चुका, तुम्हें महाप्रभु दर्शन हो गए, अब क्या अभिप्राय, क्षेत्र भी देख लिया, अभी जाओ वृंदावन वापिस। तो सनातन गोस्वामी ने बोला वेरी गुड, वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस, बहुत अच्छा सलाह दिया तुमने, बस मैं महाप्रभु को बता दूंगा, अवश्य जाऊंगा, क्योंकि महाप्रभु ही मेरा प्रभु दाता देश है, तभी यहाँ संकट किस करने का क्या फायदा, जो तपस्या वही करेंगे यहाँ रह के क्या फायदा। तो फिर ऐसा हो गया, तो फिर ठीक है अगले दिन महाप्रभु फिर आए हरदा सागर के बाद, सनातन गोस्वामी थे वहां पे, और जो है हरदा सागर ने महाप्रभु को नमस्कार किया, महाप्रभु ने आलिंगन किया, सनातन गोस्वामी दूर से नमस्कार किया, महाप्रभु फिर आ गए, बारंबार पास बुलाया तो सनातन गोस्वामी आ ही नहीं रहे थे आगे, तो फिर पीछे हट गए, लेकिन महाप्रभु ने फिर पकड़ लिया उन्हें और फिर आलिंगन किया। फिर महाप्रभु दोनों को लेकर बैठ गए एक जगह पे, है ना, गुहिया माख्याति पृच्छति, बोथ विल रिवील देयर हार्ट्स। हल्ली कई बार भक्तों को लगता है ऐसे भक्तों से बातचीत करना, हृदय रिवील करना टाइम वेस्टेज है, पर इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिम्स ऑफ भक्ति, है ना। भक्ति क्या हमारे व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ अपना हृदय रिवील कर सके। तो महाप्रभु दोनों को लेकर बैठे पवित्र स्थान पे, महाप्रभु हरदास ठाकुर सनातन गोस्वामी बस, है ना। अब कविराज गोस्वामी को कैसे पता लगा, वो हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु ने रिवील किया, और निश्चित रघुनाथ गोस्वामी के डायरी से लिखा रहेगा उन्होंने। रघुनाथ गोस्वामी नहीं स्वरूप दामोदर की डायरी से रघुनाथ गोस्वामी के मुख से श्रवण किया उन्होंने। तो एनीवे सनातन गोस्वामी उनको बोलने लगे, देखिए मैं तो जगन्नाथपुरी आया था अपने लाभ के लिए, लेकिन हो कह रहा है उल्टा हो रहा है यहाँ पे। कैसे? मैं सेवा के लिए अयोग्य हूँ, रोज अपराध करता हूँ। कैसे अपराध करता हूँ? आप आलिंगन करते हैं मेरा, स्वभाव से निम्न जन्मा हूँ, पाप कर्मों का प्रदूषित जलाशय हूँ। आप सोचिए वो कह रहे हैं कि मैं पाप का पौंड हूँ बेसिकली। तो कोई बोल सकता है कि कुछ पाप राशि बोल रहे, पूरा बड़ा कुंड हूँ मैं पाप का। तो आप वो छूते तो और ही बड़ा अपराध होता है। तो ऐसे महाप्रभु को वो बोलने लगे, बोले मुझे लग रहा है कि मेरा यहाँ रह के कुछ ही मंगल नहीं होने वाला, नुकसान ही होगा, तो मैं सोच रहा हूँ वापस वृंदावन चले जाता हूँ। और मैंने जगरान पंडित से भी सलाह किया था, तो उन्होंने भी यही परामर्श दिया कि आप वृंदावन चले जाओ। और महाप्रभु को जो क्रोध आया इसके बाद में, सब बोल रहे हैं एत सुनि महाप्रभु सरोष अंतरे जगदानंदे क्रद हयत करे तिरस्कारे कलिकार बटवा जगा ऐसे गर्वी हैला तोमा सवा रह उपदेश करी ते लागिला। वो कल का छोकरा जगदानंद इतना ढोंडी हो गया है कि तुमको उपदेश देने वाला है, तुम तो मेरे गुरु होने के लायक हो, और इतना दुस्साहस कि वो तुमको उपदेश दे रहा है। हाँ, वो बहुत गुस्सा हो गए। तो वो एक शरारती बालक की दृष्टता है। तो ऐसे महाप्रभु जब डांट रहे थे जगन पंडित के बारे में कह रहे थे, सनातन गोस्वामी तुरंत महाप्रभु चरणों में गिर गए। बोले मुझे अब समझ में आया कि जगन पंडित आपको कितने प्रिय हैं। अभी समझ में आ गया, आप उसको अपना निज संगी मानते हो और मेरे को तो सिर्फ जो है उसका अपनी डांट का कड़वा का अमृत पिलाते हो, और मुझे क्या करते हो प्रशंसा का नीम रस पिलाते हो। जो है मैं समझ गया कि मैं आपके निज जनों में नहीं हूँ एक्चुअली, है ना। लाइक अपना जन होगा तो उसको डांटेगा ना व्यक्ति, अरे भाई क्या क्या गलत कर दिया ऐसा। तो बोले आप जगन पंडित जो अपना मानते हो, मेरे को अपना नहीं मानते, है ना। ऐसा लीला हुआ जय विजय और जो चतुष कुमार के साथ में जब भगवान विष्णु के द्वार पे गए थे। तो नहीं महाप्रभु थोड़ा अभी वो क्या बोलते हैं उनको चेकमेट कर दिया सनातन गोस्वामी ने। तो फिर वो महाप्रभु उनको बोलते हैं ऐसा नहीं है देखो, है ना, लेकिन बोले तुम भी मुझे बहुत प्रिय हो। और बोले लेकिन, और ये मत सोचना कि जगदानंद मुझे तुमसे ज्यादा प्रिय है, लेकिन क्या है मैं आदर्श सर का अतिक्रमण सहन नहीं कर सकता। सो व्हाट महाप्रभु कैन नॉट टॉलरेट इज ट्रांसग्रेशन ऑफ एटिकेट्स, वैष्णव एटिकेट्स, है ना। और तुम शास्त्रों के अनुभवी विद्वान हो जबकि जगह केवल एक युवक बालक है। कहां तुम्हें प्रामाणिक शास्त्र प्रवीण, कहां जगह कलिकार बटुआ नवीना, है ना। बोले वो कल का छोकरा है जो है तो वो इसीलिए, और तुम ये सोचते कि तुम्हारा शरीर बहुत भयावह है ऐसा है, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारा शरीर अमृत के समान है। फिर महाप्रभु बोलते हैं मैं सन्यासी हूं। एक शास्त्र उक्ति देते हैं कि देखो सन्यासी हूं, मुझे क्या अच्छा है क्या बुरा है इसके ऊपर विचार नहीं करना चाहिए, सब समान रहना चाहिए। फिर दूसरा बोलते हैं कॉन्फिडेंस रीजन बताता हूं मैं तुम्हें, दोनों को बैठाया। बोले कैसे है तुम बताओ, एक माता होती है जब बच्चा मलमूत्र त्याग देता है तो माता को क्या घृणा होती है उससे, माता को ऐसा लगता है जैसे चंदन का लेप है वो, है कि नहीं, ऐसा लगता है। तो बोले तुम्हारे शरीर से मैं तुम्हें क्या हूं, अपने बालक के समान मानता हूं तुम दोनों को। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि जब मुझे कोई ये बोलेगा कि मैं सनातन या हरिदास का पालन करता हूं, है ना। तो जो है तो जब तुम्हारे शरीर से दुर्गंध मुझे आती नहीं है, जो घाव में शरीर पे लगते हैं, तो मुझे तो ऐसे लगता है जैसे चतुर्सम है। चतुर्सम मतलब कर्पूर और अगुरु और ऐसा चार चीजों को मिला करके होता है। तो बोले मुझे ऐसा लगता है वो। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं जो है आप बड़े कृपालु हैं, कोई नहीं जान सकता कि आपके अगाध स्नेह हृदय में क्या है, वॉट इज देयर इन योर डीपली मर्सीफुल हार्ट, ऐसा बोल रहे हैं। बोले आपने वासुदेव कोड़ी का आलिंगन किया और वो कामदेव से अधिक सुंदर हो गया, तो आपकी कृपा को कौन समझ सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा एक भक्त का शरीर कभी भौतिक नहीं होता, वह दिव्य आध्यात्मिक आनंद से परिपूर्ण होता है। और उसके बाद जो है कृष्ण ने सनातन गोस्वामी के शरीर में खुजली प्रकट करके क्या किया है, मेरी परीक्षा ली है कि क्या मैं भक्त के शरीर में भेदभाव करता हूँ कि नहीं करता हूँ, ये मेरी परीक्षा है तो मैं नहीं करता ऐसा। और फिर क्या हो गया, महाप्रभु ने बोला पारिषद देह ए नहय दुर्गंध प्रथम दिवस पायलु चतुसम गंध। सनातन गोस्वामी कृष्ण के संगियों में से एक है, उसके शरीर से कोई दुर्गंध नहीं आ सकती। पहले दिन जब मैंने उनका आलिंगन किया तो मुझे चतुसम चंदन कपूर अगुरु तथा कस्तूरी के मिश्रण की सुगंधी आई। और वस्तुतः प्रभु जब कैला आलिंगन तारस्पर्श गंध हैला चंदन रसम। और फिर जब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी का आलिंगन किया तो महाप्रभु के स्पर्श मात्र चंदन लेप के समान सुगंध प्रकट हो गई। और सनातन गोस्वामी जो है उनका पूरा शरीर क्या हो गया, पुनः स्वस्थ हो गया बिल्कुल जैसा है। और फिर वह प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने बोला हे प्रिय सनातन दुखी मत हो, क्योंकि जब मैं तुम्हारा आलिंगन करता हूं तब वास्तव में मुझे महान सुख मिलता है। तुम मेरे साथ जगन्नाथपुरी में एक वर्ष तक रहो, स्टे हेयर विद मी, आई गेट सो मच प्लेजर इन एसोसिएशन, इसके बाद मैं तुम्हें वृंदावन भेज दूंगा। यह कहकर श्री चैतन्य महापुरुष सनातन गोस्वामी का पुनः आलिंगन किया। इस तरह सनातन के छाले पुनः लुप्त हो गए और उनका सारा शरीर सोने के रंग जैसा हो गया। यह परिवर्तन देखकर अत्यधिक आश्चर्यचकित हुए हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु से कहा, यह आपकी लीला है। हे प्रभु, आपने सनातन गोस्वामी को झारीखंड का जल पीने को बाध्य किया और वास्तव में उनके शरीर में खुजली के घाव आपने ही उत्पन्न किए, और इन खुजली के घावों को इस तरह उत्पन्न करके आपने सनातन गोस्वामी की परीक्षा ली। आपकी दिव्य लीलाओं को कोई भी नहीं समझ सकता। इस प्रकार से ठाकुर ने प्रार्थना की कि जो यू कंप्लीटली कंट्रोल योर डिवोटीज लाइक दैट, है ना। तो ये केवल सनातन गोस्वामी की महिमा को प्रकट करने के लिए और उनके माध्यम से हम सबको शिक्षा देने के लिए कि कैसे एक भक्त को आचरण करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों को यूज करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से एक सास अपनी बहू को सिखाने के लिए क्या करती है, बेटी को डांटती है कि नहीं, देख ऐसे करना है, देख ऐसे कर, उनको मालूम बहू सुन रही है, बहू को सीधा बोलेगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा थोड़ा, है कि नहीं। तो ऐसे भगवान को मालूम है, अभी दुनिया को सिखाने के लिए साधक भक्तों को, तो नए भक्त उनको सिखाने के लिए मुझे क्या किसको यूज करना पड़ेगा, बोले जो मेरे अपने जन है ना, जो मेरे अपनी बेटी के समान है उनको बोलेंगे, उनके आदर्श को देख के साधक भक्त को शिक्षा मिलेगा कि कैसे जीवन जो है यापन करना चाहिए, कैसा भक्ति का जीवन होना चाहिए। तो इस प्रकार से ऐसा बहुत सुंदर सुंदर लीला सनातन गोस्वामी का और भी, बट स्पेशली द स्वीटेस्ट अमंग देम विच आई फेल्ट वाज हिज डीलिंग विद चैतन्य महाप्रभु। इस प्रकार से और ये दो मुख्य सनातन गोस्वामी के चरित्र में फॉलोइंग ऑफ रेगुलेटिव ऑफ वैष्णव एटिकेट, वैष्णव आचार का पालन करना और नम्रता के भाव को त्याग करना। तो आज के दिन हम सनातन गोस्वामी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे अंदर भी इसी प्रकार का भाव कुछ मात्रा में प्रकट हो। तृणादपि सुनी चैन तरुणपि सहिष्णुना अमानिना मानविना कीर्तने सदा हरि। और वैष्णव सदाचार का हम पालन और शक्ति से कर पाए, कॉन्शियसली कर पाए। कुछ समय बाद में रिचुअल बन जाता है वो केवल, यू नो, और कई बार रिचुअल भी खत्म हो जाता है। तो नियम आग्रह या आग्रह से बचकर, यू नो, शास्त्र तो जो सदाचार उसका पालन करे, स्ट्राइव कर सकें उसके लिए, डेट वी कैन बिकम डियर टू श्री चैतन्य महाप्रभु। क्योंकि दोनों ही बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। और चतुर्मास के प्रारंभ में इसका प्रयास भी कर सकते हैं, कैसे नम्रता का अपने जीवन में अनुकूल किया जाए। और नम्र जैसे अमोल जी आए थे बता रहे थे, कौन बनाता है नम्र हमको, भक्तों के संग में नम्र हो सकते हैं केवल, ठीक है। तो वैष्णव सेवा जितना हम करें उतना अधिक चैतन्य महाप्रभु हमसे प्रसन्न होंगे। उसमें तकलीफें तो बहुत आ सकती हैं, लेकिन जितना हम पालन करेंगे चैतन्य महाप्रभु प्रसन्नता के लिए, टू दैट डिग्री विल बिकम डियर टू हिम, टू दैट डिग्री विल बिकम डियर टू गोस्वामी, टू दैट डिग्री विल रिसीव मर्सी। जय श्री सनातन गोस्वामी पातिर्वा तिथि महोत्सव की, श्री चातुर्मास व्रत की, श्री सनातन गोस्वामी पाद की नेताय को और प्रेमानंदे हरे कृष्ण। आप सब मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है तो कुछ शिक्षा लेके, बोलना तो आसान है, कुछ कॉपी पेस्ट करके, बट आई कैन ऑल्सो फॉलो इन माई लाइफ। हरे कृष्ण।